इस हफ्ते माइंड विद मसल पॉडकास्ट में क्वेश्चंस ऑफ द वीक, प्रोटीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स? लो रेप्स लगाने से शोल्डर इंजरी हो सकती है, हैवी वेट लगाने से बैक पेन हो रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाए? हाइपरट्रॉफी के लिए बेंच प्रेस एंड स्क्वाट्स स्मिथ मशीन के ऊपर करना सही है? अगर स्ट्रेंथ सडनली डाउन जाना शुरू हो जाए तो क्या किया जाए? सुमो डेडलिफ्ट या फिर नॉर्मल डेडलिफ्ट, मसल बिल्डिंग के लिए दोनों में से कौन सा ज्यादा बढ़िया? वैस्कुलरिटी कैसे इंक्रीज की जाए? ऑल दिस एंड मच मोर इन दिस वीक्स एपिसोड ऑफ द Mind with Muscle podcast. Hey, welcome everybody. बहुत बहुत स्वागत है आपका Mind with Muscle podcast में. Quick updates about the podcast and also the Mind with Muscle YouTube channel. Podcast का schedule हम लोग थोड़ा सा change कर रहे हैं. पहले आपको हर Saturday को नया episode मिलता था, अभी आपको हर Sunday को नया एपिसोड मिला करेगा. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी का सारा काम वैसा ही है. आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो, उसका जवाब हर संडे को आपको मिल जाया करेगा. दूसरी चीज, माइंड विद मसल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस हफ्ते जो वीडियो रिलीज हुई है उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप लो कैलोरीज खा रहे हो, मतलब कि आप फैट लॉस पे हो, कम खाना खा रहे हो, तो भी आप अपनी स्ट्रेंथ को इनक्रीज कर सकते हो जिम में. वो आपने कैसे करना है इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा. ये सारे लिंक्स, इंस्टाग्राम के लिंक्स, यूट्यूब लिंक्स आपको शो नोट्स में मिल जाएंगे. शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला. पहला क्वेश्चन पूछा है सायान 23, ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी है. पूछते हैं, आफ्टर प्रोटीन विच इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स? सायान जी, मेरे ओपिनियन के मुताबिक वैसे तो सारे ही मैक्रो न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड देन इनको रैंकिंग करना चाहते हो तो प्रोटीन के बाद मेरे ख्याल से फैट्स आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट से. और इसका रीज़न है कि प्रोटीन एंड फैट्स ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, आपकी बॉडी इनको खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, आपको आउटर सोर्स से लेना पड़ेगा, मतलब अपने खाने से आपको लेना पड़ेगा ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स. लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप नहीं भी खाते हो तो भी आपकी बॉडी खुद इसको सिंथेसाइज कर सकती है, ग्लूकोज को खुद बना सकती है. तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट्स. बाकी ये भी बात है कि अगर हम सिर्फ इस चीज़ को नज़र में रख के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को या फिर किसी भी न्यूट्रिएंट को रैंक करने लगें तो मेरे ख्याल से ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है. सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा जिम में अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाहता है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. इसके उल्टा किसी बंदे के लिए हो सकता है कि परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो उसका कार्बोहाइड्रेट के बिना भी काम चल जाए. तो ये भी बात दिमाग में रखने की जरूरत है. बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोटीन एंड फैट्स हैं ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के बिना भी हमारा काम चल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, amrit.pb.03, ये इनके इंस्टाग्राम आईडी है. पूछते हैं, लो रैप ट्रेनिंग कैन लीड टू शोल्डर इंजरी ? ये पूछते हैं कि लो रैप जो ट्रेनिंग होती है, मतलब हम जब हैवी वेट के साथ शोल्डर्स का वर्कआउट करते हैं, हम हैवी ओवरहेड प्रेस लगाते हैं या फिर आर्नोल्ड प्रेस लगाते हैं डंबल्स के साथ, तो क्या उससे इंजरी हो सकती है? देखिए सर, इंजरी के चांसेस आपको किसी भी रैप रेंज में और किसी भी एक्सरसाइज में हो सकते हैं. डिपेंड करता है आपका रिस्क कितना ज़्यादा या कितना कम है, ये डिपेंड करता है कि आप उस एक्सरसाइज को कितने अच्छे कंट्रोल के साथ लगा पा रहे हो. अगर आप वेट इतना हैवी उठा रहे हो जितना कि जिसके ऊपर आपका फुल कंट्रोल नहीं है, तो उससे आपको इंजरी होने के चांसेस फॉर श्योर होते हैं, चाहे वो शोल्डर की कोई एक्सरसाइज है, चाहे वो कोई डेडलिफ्ट है, स्क्वाट है, चाहे कोई और भी एक्सरसाइज है. अगर आपका वेट के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है तो आपको इंजरी के चांसेस हो सकते हैं. दूसरी चीज़, अगर आपकी मोबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, आम तौर पे लोगों के शोल्डर्स में मोबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि उनको बोला जाता है कि हैवी जो ओवरहेड प्रेस है या इस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तो वो देखा देखी में या फिर किसी के सुने सुनाए बातों में आके वो हैवी लगाना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उनकी शोल्डर मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि फुल कंट्रोल एंड फुल स्ट्रेंथ के साथ वो उस लिफ्ट को परफॉर्म कर पाएं. तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप हैवी लगा रहे हो और उस हैवी वेट के ऊपर आपका फुल कंट्रोल है, प्लस आपके उस जॉइंट में बहुत ही अच्छी मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ है, तो आपको इंजरी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. यह बात हमेशा याद रखिए कि जिम में आपको इंजरी तब होती है जब आपका किसी भी लिफ्ट में कोई ना कोई वीक लिंक होता है. अगर कोई वीक लिंक, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में नाम लिया है कि अगर आपकी शोल्डर मोबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो आपका वीक लिंक साबित हो सकता है और आपको इंजरी हो सकती है. तो अगर आप हैवी उठाना चाहते हो तो हैवी उठाने से पहले आई वुड सजेस्ट कि अपनी शोल्डर मोबिलिटी के ऊपर अच्छे से काम करो. प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ आप धीरे धीरे वेट को इंक्रीज करोगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कंट्रोल इंक्रीज होगा, तो आपको इंजरी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरजोत बहला पूछते हैं, भाई बैक पेन कैसे ठीक हो, हैवी वेट लगाने से हुआ है? तो आपका गुरजोत जी क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है. हैवी वेट लगाने से आपको पेन हो किसी ज्वाइंट में बहुत कम चांसेस हैं, गलत तरीके से हैवी वेट लगाने से आपको पेन हो इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो वेट आप हैवी उठाना चाहते हो उससे पहले आपको अपनी फॉर्म एंड टेक्निक एकदम नेल डाउन करनी होगी। आपका जो भी ज्वाइंट उस लिफ्ट में काम आना है उस ज्वाइंट में अच्छी मोबिलिटी होनी चाहिए। बहुत ही कम चांसेस है कि आपको हैवी वेट लगाने से बैक में पेन हो या फिर कहीं और पेन हो, और अगर हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप लिफ्ट परफॉर्म कर रहे हो जिम में जाके, उसमें आपकी फॉर्म एंड टेक्निक कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो आप सुधारिए, आपकी बैक पेन या फिर किसी भी जगह पे आपको पेन है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। आपको रूट कॉज जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। पेन जो है वो सिर्फ एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। इस बात को समझिए कि जो पेन होता है ना वो आपकी बॉडी का आपको बताने का तरीका है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना वो सही तरीके से नहीं कर रहे हो। और काफ़ी सारे लोग ये जो क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी बैक में पेन हो रहा है, तो उनके दिमाग में होता है कि शायद मैं उनको एक आध कोई एक्सरसाइज बताऊंगा और वो एक्सरसाइज करने से उनको रिलीफ मिलेगी या फिर कोई और नुक्ता बताऊंगा। देखिए, नुक्ते ऐसे ना ब्लाइंडली काम नहीं करते हैं। जो भी आपकी पेन का रीज़न है ना, पहले आपको रीज़न पता करना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब आपकी प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होगी। अगला क्वेश्चन है कॉमरेड _कॉर्टिसोल, ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, पूछते हैं इज स्क्वाटिंग एंड बेंचिंग ऑन स्मिथ मशीन एनी बेनिफिशियल एज फार एज हाइपरट्रॉफी इज कंसर्न्ड। तो हाइपरट्रॉफी यानी मसल बिल्डिंग के लिए ये पूछते हैं कि स्मिथ मशीन यूज की जा सकती है बेंच प्रेस में और स्क्वाटिंग में। देखिए, स्क्वाटिंग में या फिर किसी भी तरह की लोअर बॉडी एक्सरसाइज में स्मिथ मशीन में बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूं। मैंने काफी बार ये चीज आपको बताई हुई है कि जो स्मिथ मशीन होती है ना उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो बार का ट्रैवल पाथ होता है ना वो फिक्स्ड होता है, लेकिन जब आप लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करते हो, लेट्स से कि आप स्क्वाट करते हो, है ना, तो स्क्वाट में आप देखोगे कि अगर आप साइड से वीडियो बनाओ अपनी तो आप देखोगे कि जो बार का ट्रैवल पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर नीचे नहीं जा रहा है ना, थोड़ा सा कभी आगे हो सकता है, थोड़ा सा पीछे हो सकता है। और उसका रीज़न है कि जब हम नीचे बैठते हैं तो बॉडी थोड़ी सी आगे की तरफ जाती है, थोड़ी सी पीछे की तरफ आ सकती है, जो कि नेचुरल मूवमेंट है हमारी। लेकिन अगर आप स्मिथ मशीन के ऊपर सेम तरह की मूवमेंट करते हो, स्क्वाट करते हो, तो आपकी बॉडी की लाइन ऑफ मूवमेंट भी वो फिक्स कर देती है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि स्मिथ मशीन के ऊपर जब लोग स्क्वाट लगा रहे होते हैं तो किसी के पैर थोड़े से आगे होते हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे झूला झूल रहे हैं, है ना, क्योंकि वो नेचुरल पोजीशन नहीं है हमारी। नेचुरली हम इस तरह से एक लाइन में सीधे ऊपर नीचे नहीं बैठते हैं। तो इस वजह से लोअर बॉडी के लिए, जैसे स्पेशली स्क्वाट्स के लिए, मैं स्मिथ मशीन कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। बेंच प्रेस के लिए या फिर अपर बॉडी के लिए स्मिथ मशीन को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर चीज़ ये है कि आप लाइट वेट के साथ पहले शुरुआत करो। बेंच प्रेस आप नॉर्मली फ्री वेट लगाओ, लाइट वेट के साथ लगाने की कोशिश करो। उससे आपको ना जो आपकी कमियां होती है ना वो बहुत ज़्यादा जाहिर हो जाती हैं। अगर आपके शोल्डर्स में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो जाहिर हो जाती है फ्री वेट के ऊपर। तो लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मैं फ्री वेट के ऊपर कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूं, तो वो करते नहीं हैं। एक्चुअली करना क्या चाहिए कि जब आपको फ्री वेट में कोई भी एक्सरसाइज लगाने से कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आपको देखना चाहिए कि मुझे वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है और उसको फिक्स करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि अगर मुझसे स्क्वाट नहीं लग रहे हैं तो मुझे पहले स्मिथ मशीन के ऊपर लगाने चाहिए, फिर मुझे फ्री वेट के ऊपर आना चाहिए। और उनके दिमाग में होता है कि शायद मैं 2-3 महीने पहले स्मिथ मशीन के ऊपर प्रैक्टिस करूंगा तो उसके बाद नॉर्मल स्क्वाट मेरी अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। चाहे आप 6 महीने कर लो, 1 साल करके देख लो स्मिथ मशीन के ऊपर, उसके बाद जब आप नॉर्मल फ्री वेट स्क्वाट के ऊपर आओगे तो भी आपको उतनी ही दिक्कत आएगी। तो पूरी कहानी का सार क्या है कि आपने नॉर्मल जो फ्री वेट्स हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम लगती है, उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की तरफ आपका मेन फोकस होना चाहिए। लाइट वेट के साथ पहले प्रैक्टिस करो काफ़ी देर तक, जब आप मूवमेंट एकदम नेल डाउन कर लो तब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और अगर वेट डालना चाहते हो ज़्यादा बार के ऊपर तब आप सोचो, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है बजाय कि आप स्मिथ मशीन वाले झंझट में पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन संचित .गोगिया पूछते हैं, अगर स्ट्रेंथ सडनली डाउन हो जाए तो क्या करें? तो सर, सबसे पहले तो ये पता करने की कोशिश करें कि स्ट्रेंथ डाउन हुई क्यों है। आमतौर पे जब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ता है जिम में, या फिर वो अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं तो भी स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ता है। स्लीप अगर अच्छी नहीं है आपकी तो भी स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ता है। तो आप देखिए कि आपके लाइफस्टाइल में क्या चीज़ है, क्या फैक्टर है जो कि आपकी स्ट्रेंथ को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। देखिए, कोई भी समस्या है ना, हर समस्या का कुछ ना कुछ रीज़न होता है। कोई भी समस्या बेवजह कभी भी नहीं होती है, ठीक है। तो कोई भी समस्या आपको आए, जिम में आए, चाहे लाइफ में वैसे भी आए, तो आपको आपके दिमाग में ये बात सबसे पहले आनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। कोई ना कोई वजह तो इसकी ज़रूर है, तो उस वजह को पता करना पड़ेगा। जैसे मैंने 2-3 जो पॉसिबल रीज़न आपको बताए हैं, स्ट्रेस हो सकती है किसी चीज़ की, या फिर आपका स्लीप की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार हमें लगता है कि हम 7-8 घंटे सो रहे हैं लेकिन स्लीप की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, आपको बार बार जाग आती है, डीप स्लीप उतनी अच्छी नहीं होती, उसकी वजह से भी स्ट्रेंथ में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। या फिर एक पॉसिबल रीजन ये भी हो सकता है कि अगर आप अननेसेसरीली बहुत ज्यादा पुश कर रहे हो अपने अपने आप को जिम में, जितना आपको पुश करने की जरूरत नहीं है, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम जरूरत से बहुत ज्यादा है, तो भी आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये 3-4 रीजंस हो सकते हैं। आप देखिए अपने हिसाब से कि आपका क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है, उसको फिक्स कीजिए एंड देन आपका जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरपाल 2835, ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, पूछते हैं कि डेडलिफ्ट कौन सी ज़्यादा बढ़िया है, सुमो या फिर नॉर्मल। देखिए दोनों ही बढ़िया हैं, कोई भी एक्सरसाइज हो उसके वेरिएशंस की वैल्यू होती है और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्लेस होती है आपके वर्कआउट रूटीन में। जैसे कि अगर आप कोई एक एक्सरसाइज किसी एक ही तरह से हमेशा के लिए लगा रहे हो तो आप ना एक टाइम आएगा जब आपको दिखेगा कि यार अब मैं इस एक्सरसाइज में ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो मैं वॉल्यूम अपनी इंक्रीज़ कर पा रहा हूँ और मेरे जो नंबर्स हैं वो स्टक हो गए हैं। तो क्या होता है कि अगर आप उसी एक्सरसाइज का कोई और वेरिएशन लगाते हो, जैसे आपने डेडलिफ्ट और सुमो डेडलिफ्ट के बारे में बताया, तो अगर आप दूसरा वेरिएशन ट्राई करोगे ना कुछ टाइम के लिए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, तो आप देखोगे कि उसका कैरी ओवर बेनिफिट आपको आपकी दूसरी लिफ्ट में भी मिलेगा। मतलब अगर आप हमेशा से डेडलिफ्ट लगा रहे थे, सुमो डेडलिफ्ट कभी भी नहीं लगाए, थोड़ी देर के लिए कुछ हफ्ते या कुछ इवन महीनों के लिए सुमो डेडलिफ्ट अगर आप लगाओगे और वापस जब आप कन्वेंशनल पे आओगे, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के ऊपर, तो आपको आपकी स्ट्रेंथ में इजाफा दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है किसी भी एक्सरसाइज के डिफरेंट वेरिएशन से। कोई भी एक्सरसाइज जिनके जो वेरिएशंस होते हैं ना, हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा बढ़िया है या फिर ये ज़्यादा बढ़िया है। हर वेरिएशन की एक जगह होती है और एक प्लेस होती है, एक यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है ऋषि डॉट छाबड़िया पूछते हैं हाउ टू इंक्रीज वैस्क्युलरिटी। वैस्क्युलरिटी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि वैस्क्युलरिटी कैसे इंक्रीज की जाए। देखो वैस्क्युलरिटी आप समझो कि आपकी जो नसें, अगर वो आप दिखाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही जरिया है कि नसों के ऊपर की जो परत है उसको पतला किया जाए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। मतलब आपकी चमड़ी और चमड़ी के नीचे जो लेयर है फैट की, उसको अगर पतला हम करें तो आपकी नसें ज़्यादा दिखाई देंगी, आप ज़्यादा वैस्कुलर दिखाई दोगे। सिंपल है ना। होता क्या है कि जब हम किसी के पोस्टर्स देखते हैं अपने जिम में या फिर किसी को इंस्टाग्राम पे देखते हैं, हमें लगता है कि यार हमें भी इस तरह की बॉडी चाहिए, हमें भी इस तरह की वैस्कुलरिटी चाहिए, और हम इस बात को गौर नहीं करते हैं कि जिस बंदे की फ़ोटो, जिस बंदे के पोस्टर हम लोग देख रहे हैं, उनको 20-20 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए, तब वो उस स्टेज पे पहुँचे हैं। पहुँच हम भी जाएंगे, धीरे धीरे करके हम भी पहुँच जाएंगे, लेकिन हम में पेशेंस उतनी ज़्यादा आम तौर पे नहीं होती है लोगों की। मैंने देखा है कि 20-25% के करीब करीब फैट होती है, मसल मास अभी उनका इतना ज़्यादा होता नहीं है और वैस्कुलरिटी की बातें लोग कर रहे होते हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इन चीज़ों को ना टाइम लगता है। जब मसल्स मेच्योर होते हैं, मसल का साइज़ अच्छा होता है, फैट की लेयर कम होती है, तब आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देने को मिलती हैं, और ये चीज़ें काफ़ी देर बाद में आपको मिलती हैं, और कितनी देर बाद मिलती हैं ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है। कोई बंदा हो सकता है इस चीज़ को जल्दी अचीव कर ले, कोई बंदा हो सकता है कि किसी को सालों तक लग जाए इस चीज़ को अचीव करने में। लेकिन आंसर इसका वही रहेगा कि आपको आपकी फैट परसेंटेज डाउन करनी पड़ेगी, आपका मसल मास इंक्रीज करना पड़ेगा, आपकी नसें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। आमतौर पे ये क्वेश्चन वो भी लोग करते हैं जिनको लगता है कि कोई स्पेशल सप्लीमेंट जो होता है उससे वैस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, सिट्रुलिन मैलेट हो गया, एल सिट्रुलिन हो गया, इससे कुछ थोड़ा बहुत पंप ज़्यादा मिलता है, तो नसें जो है ड्यूरिंग दी वर्कआउट ज़्यादा नसें दिखाई देती हैं, ज़्यादा वैस्कुलर लगता है बंदा। लेकिन इस तरह के सप्लीमेंट भी, ये बात प्लीज़ समझिए, आप उसी के ऊपर काम करते हैं। टेम्प्रेरी तौर पे जो आप वैस्कुलर ज़्यादा देखते हो, वो भी आप तभी देखते हो जब आपके पास अच्छा खासा मसल मास हो और आपकी फैट परसेंटेज डाउन हो। कोई बंदा जिसकी 20-25% बॉडी फैट है, वो एल सिट्रुलिन खा ले, कुछ भी खा ले, उसकी नसें उस तरह से बाहर नहीं आएंगी। तो सप्लीमेंट को इस तरह से मत समझिए कि कोई चीज़ आप खा लोगे और आपकी नसें बाहर आ जाएंगी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, सो ये था आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर संडे के संडे अब नया एपिसोड रिलीज हुआ करेगा। अगर आप भी मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके जब आप सर्च करोगे #mindwithmusclepodcast, तो इस पॉडकास्ट से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट मैंने पोस्ट की हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। किसी भी पोस्ट के नीचे जाके आप जब क्वेश्चन करोगे तो उसको इस पॉडकास्ट में आंसर किया जाएगा। आई विल मेक श्योर, अगर मैं यहाँ पे आंसर नहीं भी कर पाता हूँ तो भी आई विल मेक श्योर कि मैं इंस्टाग्राम पे आपको ज़रूर जवाब दूँ। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट पे ये पॉडकास्ट सुनते हो तो 5-star रिव्यू देके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट भी कर सकते हो। फ्री वर्कआउट प्रोग्राम्स, लॉट्स ऑफ वर्कआउट एंड डाइट स्ट्रेटजीज के बारे में और जानना चाहते हो तो माइंड विद मसल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, मजे करो, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग। यू बीन लिसनिंग टू द माइंड विद मसल पॉडकास्ट।